आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीका यात्रा के बाद नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचे द्विपक्षीय संबंध। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं सहित कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मंत्री गांव-गांव जाकर मनरेगा के नए स्वरूप जीराम जी के भ्रामक प्रचार का जवाब दें। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी, कई जिलों के स्कूलों में दो दिनों का अवकाश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर 2025 की अफ्रीका यात्रा के बाद भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंध एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच गए हैं। टाइम्स ऑफ ओमान की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने अगले दशक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जो व्यापार, बुनियादी ढांचे और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर केंद्रित है। आर्थिक और व्यापारिक आंकड़े वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 550.19 मिलियन डॉलर रहा। भारत ने 476.81 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। वहीं भारत ने इथियोपिया को 1 अरब डॉलर से अधिक की ऋण सहायता दी है, जिससे वहां चीनी उत्पादन, रेलवे और बिजली ट्रांसमिशन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास हेतु कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी, जिससे करीब 34,400 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनमन योजना को 2028 से 2031 तक विस्तार देते हुए करीब 28,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए बैठक में सभी मंत्रियों को ई कैबिनेट के लिए टैबलेट प्रदान कर प्रशिक्षण भी दिया गया। मंत्री चैतन्य कश्यप ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं और अगले दो कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टेबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने निर्देश दिए हैं कि सभी महाविद्यालय 15 जनवरी तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्वयं पोर्टल पर मैपिंग पूर्ण करें। बता दें कि मध्य प्रदेश गैर तकनीकी विषयों में 350% की वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल है। पोर्टल का उद्देश्य वंचित छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा पहुंचाना और क्रेडिट लाभ दिलाना है। इसके साथ ही कॉलेजों में नियमित कक्षाओं, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश मंत्रालय वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की 11वीं बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी विकास के 4 नए स्वतंत्र प्रभागों के गठन पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि नर्मदे परियोजना शुरू करने के निर्देश दिए, जिसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक में नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, पीपीपी मोड और ई वाहन पॉलिसी तथा आईटी आधारित स्मार्ट प्रणालियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल रात भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक अहम बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य शामिल हुए। बैठक में प्रत्येक गांव को विकसित गांव बनाने और मनरेगा के नए स्वरूप जी राम जी पर रणनीति बनी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर विपक्ष के भ्रामक प्रचार का जवाब दें। इसके साथ ही वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में मतदाता सूची से नाम कटने जैसी शिकायतों पर भी गंभीर समीक्षा की गई। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। ये केवल निगरानी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधारों का भी माध्यम साबित हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज चर्चा ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित बोगीबील रेल सड़क पुल पर।
बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। यह ब्रिज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है और इसके माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हुआ है। 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिला है। इस परियोजना को वर्ष 1997-98 में मंजूरी दी गई थी, जबकि इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू हुआ था। निर्माण कार्य शुरू होने के करीब 13 साल बाद भी केवल 72% काम ही पूरा हो सका और परियोजना की लागत भी 5 गुना बढ़ गई। मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के माध्यम से इस परियोजना की समीक्षा की, जिसकी अनुमानित लागत 5,900 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद काम की गति में तेजी आई और पुल का निर्माण 25 दिसंबर 2018 को पूरा हुआ। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि प्रगति के माध्यम से बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है।
बोगीबील रेल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इसे मार्च 1997 में मंजूरी मिली। मई 2015 में पहली बार इसकी समीक्षा की गई। उस समय परियोजना 64% पूरी हो चुकी थी। 2018 में इसे शुरू किया गया। प्रगति में इसकी समीक्षा होने के लगभग 2.5 साल बाद ये परियोजना पूरी हो गई।
दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश में शीतलहर के चलते प्रशासन सख्त है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में आज और कल 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। वहीं खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों का समय बदलकर 10 बजे के बाद कर दिया है। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने आज सभी स्कूल तथा आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित किया है। वहीं पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। अब करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। राजगढ़ में पारा गिरकर 2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी भोपाल में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भीषण शीतलहर का प्रकोप है। शाजापुर और शहडोल समेत कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कोहरे की बात करें तो ग्वालियर, दतिया और छतरपुर में घने कोहरे के चलते यातायात की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग ने आज भी भोपाल सहित प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया है। भोपाल, राजगढ़ और मंदसौर में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत भैरुंदा सीहोर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में गोपालपुर की टीम ने चकल्दी को हराकर खिताबी जीत दर्ज की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मामा हमेशा साथ हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बेटियों के जज्बे ने सबका दिल जीत लिया। आयोजन में विधानसभा स्तरीय क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले भी संपन्न हुए। भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर चालित सिमुलेशन की तकनीक विकसित कर ली है। इससे गर्म जल को ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से जमाया जा सकेगा। इस तकनीक से पानी सहित किसी भी द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के छोटे तालाब पर राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप कल शुरू हुई। मेजबान मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार आगाज किया। प्रदेश के गृह विभाग ने कल शाम 64 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। कटनी पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। झाबुआ में दिव्यांग पंचायत सचिव की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 15 जनवरी तक अपनी दावा आपत्तियां लिखित में दे सकते हैं। रतलाम में 10 जनवरी को 2500 मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाएगा। नीमच में बाछवाड़ा समुदाय के युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने के लिए पंख अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिए गए हैं। और निवाड़ी जिले में कलेक्टर जमुना भिड़े ने पुलिस और प्रशासन को जमीनी विवादों पर मिलकर और सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।